ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग भागवत महापुराण से रीडिंग करेंगे। आई एम स्पीकिंग इन हिंग्रेजी, हिंग्रेजी हिंग्लिश। सेकेंड चैप्टर दूसरा श्लोक। श्री विष्णु दूतावचो अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्मः स्पृशते सभाम यत्र अदंडयेषु अपापेषु दंड वै घ्रियते वृथा। श्री विष्णु दूता उचुहु अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्मास्पश्यते सभा यत्रादंडेषु पापेषु दंडो यै ध्रियते वृथा। श्री विष्णु दूता उचुः अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्मास्पृशते सभा यत्रादंडेषु पापेषु दंडो यै ध्रियते वृथा। श्री विष्णु दूता उचुः अहो कष्टम धर्मदृशाम अधर्मास्पृशते सभा यत्रादंडेषु पापेषु दंडो यै ध्रियते वृथा। माताजी श्री विष्णु दूताच हो। विष्णु दूतों ने कहा, पटिडो स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, देयर ट्रांसलेशन इफ यू वांट टू। ओहो हाय भक्तृ प्रभु, यू हैव इंडियन पासपोर्ट ना बेट? कष्टम, कितना दुखदाई है। धर्म दृशाम, धर्म पालन करने में रुचि लेने वाले पुरुषों को, अधर्मा अधर्म स्पृष्टे प्रभावित कर रहा है। सभां सभा को, यत्र जिसमें, अदंडेशु न दंडित होने वाले पुरुषों पर, अपापेशु पाप रहित, दंड दंड यही जिनके द्वारा घ्रियते निर्धारित किया जाता है, वृथा व्यर्थी। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णु दूतों ने कहा, हाय यह कितना दुखद है कि ऐसी सभा में जहां धर्म का पालन होना चाहिए वहां अधर्म को प्रविष्ट कराया जा रहा है। निस्संदेह धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप और दंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। तात्पर्य, विष्णु दूतों ने जमदूतों पर आरोप लगाया कि वे दंड देने के लिए अजामिल को जमराज के पास तक घसीट कर ले जाने का प्रयास करके धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। यमराज वह अधिकारी हैं जिसे भगवान ने धार्मिक तथा अधार्मिक सिद्धांतों का निर्णय करने तथा अधार्मिक लोगों को दंड देने के लिए नियुक्त किया है। किंतु यदि पूर्णतया निष्पाप लोग दंडित होते हैं तो जमराज की पूरी सभा दूषित होती है। यह नियम न केवल जमराज की सभा पर लागू होता है अपितु संपूर्ण मानव समाज पर भी लागू होता है। मानव समाज में धार्मिक सिद्धांतों का सही ढंग से पालन करना राजा के दरबार का या सरकार का कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है और सरकार यह ठीक से निर्णय नहीं ले पाती कि कौन दंडनीय है और कौन नहीं। कहा गया है कि कलयुग में यदि न्यायालय में धन नहीं व्यय किया जाता तो न्याय नहीं मिल सकता। निस्संदेह न्यायालयों में प्रायः पाया जाता है कि अनुकूल निर्णयों के लिए मजिस्ट्रेटों को रिश्वत दी जाती है। कभी कभी संपूर्ण जनता के लाभार्थ कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने वाले धार्मिक लोगों को बंदी बनाकर पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा सताया जाता है। विष्णु दूत जो कि वैष्णव थे इन्हीं सोचनीय तथ्यों के लिए शोक कर रहे थे। वैष्णवजन समस्त पतित आत्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण धार्मिक सिद्धांतों की मानक विधि के अनुसार प्रचार करने बाहर जाते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से जिन वैष्णवों ने भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है वे कभी कभी सताए जाते हैं और शांति भंग करने के झूठे आरोप पर न्यायालयों द्वारा दंडित किए जाते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह जो अध्याय है, इस अध्याय का यदि नाम रखा जाए भौरों की औषधि तो उचित होगा। यह अध्याय भौरों की औषधि बताने वाला अध्याय है। जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में गाते हैं, इन्ने छे औषधि माया नासी बार लागे, हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मांगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु औषधि लाए हैं माया को नष्ट करने के लिए, हम लोगों को शुद्ध करने के लिए, और वह है हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम। तो विष्णु दूतों के द्वारा इस अध्याय में उसी औषधि का प्रतिपादन किया गया है। इसके पूर्व के अध्याय में हम लोग कथा सुन चुके हैं कि किस प्रकार से जमदूत लोग अजामिल को पास बंधन में जकड़ दिए थे। अजामिल अंत में नारायण का नाम लिया और वहां विष्णु दूत आए। ये बड़ा सुंदर बात है, वैष्णवों को सीखना चाहिए। कभी कभी कोई गलती कर भी देता है तो हम जानते हैं कि गलत किया है, लेकिन फिर भी ये अच्छा होगा जान लेना कि भाई वो जो कार्य कर रहा है वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो विष्णु दूत लोग जानते थे कि जमदूत लोग गलत काम कर रहे हैं। अजामिल नारायण का नाम लिया है फिर भी इसे ले जा रहे हैं, तो वे लोग मना किए। पहले तो वार्ता स्थापित करने के लिए, संवाद स्थापित करने के लिए, यदि मना नहीं किए होते तो जमदूत लोग थोड़े मानने वाले थे, वो तो घसीट कर ले ही जाते। मना किए, वो भी अजामिल को एड्रेस किए कि डरो नहीं डरो नहीं। मना किए तो पहले तो जमदूत लोग विष्णु दूतों को देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे हरे कृष्ण वालों को कभी वो देखे ही नहीं थे। प्रथम बार उन लोगों को मुलाकात हुई थी वैष्णवों से। वैष्णव लोग सब प्रकार से शुद्ध होते हैं, अंदर से बाहर से सब प्रकार से, कि भगवान शुद्ध है। स्नान इत्यादि करते हैं, स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, उद्धपूर्ण तिलक धारण करते हैं, तो देखने में ही बड़े सुंदर लगते हैं। और जो व्यक्ति उन वैष्णवों का दर्शन करता है वही पवित्र हो जाता है। दर्शन अपवित्र कर ये तुम्हार गुण। तो जमदूत लोग विष्णु दूतों का दर्शन कर करके ही पवित्र हो गए, और पवित्रता का प्रथम लक्षण हुआ उन लोगों में कि वे जेंटिलमैन बन गए। वैष्णव होने का मतलब जेंटिलमैन, वैष्णव आदि जेंटिलमैन, सज्जन व्यक्ति। तदिक्षव कारुणिका श्रीदम सर्वदेहिनाम जा सत्रव शांत साधव साधु साधव या जेंटिलमैन, वैष्णव मतलब जेंटिलमैन। तो ये जमदूत लोग इन जेंटिलमैन का दर्शन कर करके पवित्र हो गए और उनका खूब वर्णन किए कि आप लोग तो देखने में ऐसे लगते हैं, आप देवता हैं, उपदेवता हैं, आखिर हैं कौन, और आप नहीं जानते हैं कि अजामिल कितना पापी है, इसने बहुत पाप किया है, इसको हम लोग ले जाना चाहते हैं, और अभी अपने मन से नहीं ले जा रहे हैं, हमारे सरकार ने हम लोगों को कहा है, है? तो आप लोग तो भद्र पुरुष लगते हैं देखने में, साधु स्वभाव के लगते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि अथॉरिटी का आज्ञा पालन करना, हमारे अथॉरिटी जमराज जी हैं, उनके आदेश से हम लोग ये काम कर रहे हैं, अपने मनमानी काम नहीं कर रहे हैं। जमदूत लोग भी यथावत कार्य कर रहे थे जैसा कि जमराज जी कहे थे, तो कहे कि हम आपको चाहिए सहयोग करना, लेकिन आप लोग इसे रोक रहे हो। जब वे लोग अपना परिचय दिए कि हम लोग धर्मराज के दूत हैं, जमराज के दूत हैं, और इन लोगों से प्रार्थना किए कि आप लोग इसे व्यर्थ में न रोकें, हमें ले जाने दीजिए, तब विष्णु दूतों ने उन लोगों से प्रश्न किया कि भाई यदि आप अपने को जमदूत कहलाते हो, जमराज के दूत कहलाते हो, यदि उक्ते जमदूत इते वासुदेवोक्त कारिण कह, यदि तुम अपने को जमराज के आज्ञाकारी कहते हो तो कुछ बताओ कि नियम कानून क्या है। भृत धर्मस्य न तत्वम, हम लोगों को न, मतलब हम लोग चार लोग थे, हम लोगों को धर्म के सिद्धांत में के विषय में बताओ। यूम वही धर्म राजस्य यदि निर्देशकारिण, तुम लोग कह रहे हो कि हम धर्मराज के आदेश से इसको ले जा रहे हैं, तो भाई सेवक वह होता है जो सेवकाई करे, सेवक वह है जो मालिक के आज्ञा को यथावत समझे। मैं पिछले बार बताया था हनुमान जी के विषय में कि हनुमान जी इतने अच्छे सेवक थे कि जगत जननी सीता का पता लगाने गए थे, वे सीता जी का पता लगा करके आए, उनका काम था सीता जी का पता लगा करके आना, सीता जी को लाना उनका काम नहीं था। यदि हनुमान जी चाहते तो पूरे लंका को हथेली पर उठा करके लेकर के आ सकते थे, ये संजीवनी बूटी लाने के लिए गए ना, पूरे पहाड़ को उठा कर ला दिए, तो पूरे लंका को, अशोक वाटिका क्या कह रहा है, लंका को उठा कर ला सकते थे हनुमान जी, लेकिन वो सब काम नहीं किए, वो सेवकाई किए। सेवक वही है जो सेवकाई करे। हम लोग प्रभुपाद के सेवक हैं, हम लोग कृष्ण के सेवक हैं। अब ये सेवक फोन पर बात कर रहा है, ये सेवकाई थोड़े है, क्लास में फोन होना चाहिए, बंद करो। ये सब डिस्टर्बेंस है। तो प्रभुपाद जी के हम सेवक हैं, तो प्रभुपाद जी जो नियम कानून बताए हैं उन नियम कानून का यथावत पालन करना, यही सेवक का असली लक्षण है। अभी दिसंबर का महीना आ रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना आ रहा है, तो असली सेवकाई प्रभुपाद जी के प्रति यही होगा कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का हम जाकर के वितरण करें। प्रभुपाद जी बहुत खुश होते थे ग्रंथ के वितरण से, ये असली सेवकाई होगा। तो इसीलिए कहते हैं यदि निर्देश कारिण, अपने को यदि धर्मराज का सेवक कहते हो तो भैया तुम लोग बताओ कि धर्म का ज्ञान क्या है, धर्म किसे कहते हैं। यदि हम अपने को इस्कान का डिवोटी कहते हैं तो इस्कान का नियम कानून हमको कम से कम जानना चाहिए, मोटा मोटी यही तो विष्णुदूत कह रहे हैं। भृत धर्मस्य न तत्वम यच्च अधर्म लक्षणम, धर्म और अधर्म का लक्षण क्या है इसको आप हमें बतलाओ।
तो हम लोगों को इस्कान का सिद्धांत यथावत समझना चाहिए। अभी आसाराम बापू का कंट्रोवर्सी चल रहा है ना? तो कई एक लोग पूछने आते हैं कि आपका क्या कहना है इसके विषय में, आप क्या कहना चाहते हैं। तो एक मात जी है जो हर एक जन्माष्टमी में यहां पर आती हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा कि इस्कान का स्टैंड इसके विषय में क्या है। मैं कहा कि किसके विषय में, कहा कि आसाराम बाबू के विषय में। तो मैंने कहा कि इस्कान में आसाराम बाबू का नाम ही नहीं आता है, इस्कान का विषय है तो कृष्ण के भक्ति का प्रचार करना, इस्कान का सिद्धांत है कि यह बतलाना कि देह क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, भगवान क्या है, संसार में हम दुख क्यों भोग रहे हैं, दुख से कैसे परे हो सकते हैं भगवान से संबंध स्थापित कर करके। तो इस्कान तो लोगों से भगवान से संबंध जुटाने का काम कर रहा है, यानी सब में भगवान के प्रति संबंध है, प्रेम है, लेकिन वो जो तांता जो है, संबंध जो है, थोड़ा विच्छेद जैसा हो गया है, तो उसको इस्कान जोड़ने का काम कर रहा है, रिक्लेम कर रहा है लोगों को भगवत धाम जाने के लिए। यह इस्कान का सिद्धांत है, इस्कान का नियम है। तो कहना कि मैं जानता हूं, लेकिन आप बतलाइए आसाराम बापू के विषय में आपको क्या कहना है। तो मैंने कहा कि मैं तब कुछ कहूंगा जब उनके विषय में कुछ जानूंगा, जब जानता नहीं तो मैं क्या कहूं, न तो मैं उनका जीवनी जानता हूं, न उनके विषय में कुछ जानता हूं, न उनका फिलोसफी जानता हूं, तो मैं क्या बोलूं। तो कहा नहीं, आप ये सब सुनते हैं, सब देखते हैं, सब ये क्या हो रहा है सब जगह। मैं कहा बहुत कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, अब मैं क्या बताऊं क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। कहा नहीं, आजकल वो कोई अभद्र व्यवहार किए, ऐसे किए, ऐसे किए। तो मैं कहा कि मैं जानता हूं आप क्या जानना चाहती हैं, लेकिन आप बताओ आपका न्यायालय पर विश्वास है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आप भक्त लोग अभी जाओगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, गीता बांटने के लिए, तो आजकल आसाराम बापू का जो मामला है बहुत गरम गरम है। तो लोग पूछेंगे तो इस्कान का स्टैंड क्या है समझना चाहिए, सिद्धांत क्या है। पहला नंबर के हम लोग किसी प्रकार के कंट्रोवर्सी में कहीं पड़ना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को प्रचार करना है। कंट्रोवर्सी में पड़ेगा प्रचार कहां होगा, सब लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो। यदि कह दोगे कि नहीं वो खराब है तो उनके चेले आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप कह दोगे अच्छा है तो माताजी लोग आपके पीछे पड़ जाएगी है? तो कंट्रोवर्सी में क्यों पड़ने का। तो मैं कहा कि आप रिपोर्टर हैं, आपको भारतीय संविधान में विश्वास है, कहा कि बिल्कुल विश्वास है। मैंने कहा कि आपको न्यायालय सिस्टम विश्वास है, कहा बिल्कुल विश्वास है। तो मैं कहा कि न्यायालय में क्या होता है, न्याय कैसे होता है, दोनों पक्ष में आता है ना, नाजीदास एक पक्ष सुन करके नहीं ना, दोनों पक्ष सुना जाता है। तो यदि मैं एक पक्ष सुन करके यह कहूं कि आसाराम बाबू के विषय में क्या मुझे कहना है, तो उचित नहीं होगा, दोनों पक्ष सुनना चाहिए। आपने जो सुना है हमको बताया, आप तो आसाराम बाबू से बढ़कर बात नहीं किया, उनसे कुछ सुना नहीं, तो हम एक तरफा कैसे बात कहें। और ऐसे भी ये मैटर कोर्ट में है ही, तो डिसाइड करने दीजिए। जहां तक इस्कान का क्या कहना है आप वो पूछ रही हैं, तो इस्कान का सिंपल कहना है, और वह कहना यह है कि हम लोग कृष्ण के दास हैं और कृष्ण का सेवा करके हम सब लोग सुखी हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब धार्मिक लोग ऐसे ही हैं, सब लोग ऐसे ही हैं, सब धर्म वाले ऐसे ही हैं। मैं कहा आप गलत कह रहे हो, भारत का एक नागरिक गलती कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि सब भारतीय खराब हो गए। अंग्रेजी में कहावत है ब्लेम द प्लेयर नॉट द गेम। प्लेयर का निंदा करो, गेम का निंदा क्यों कर रहे हो? एक व्यक्ति विषय को जो करना कहो, धर्म के विषय मत कहो, बात कहो। ये मत कहो कि सब लोग ऐसे ही हैं। एनीवे लंबी चर्चा हुई थी, तो मैं ये कहना चाहता था एक बात कि इस्कान का स्टैंड क्या है आप भक्तों को जानना चाहिए। और वह स्टैंड है कि हम लोग किसी प्रकार के कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों का धर्म लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। और लक्ष्य क्या है कि लोगों को कृष्ण भक्ति का ज्ञान देना, गीता का वितरण करना, बाय हुक एंड क्रुक डिस्ट्रीब्यूट द बुक, कैसे भी पुस्तकों का वितरण करना, ये इस्कान का सिद्धांत है, ये हम लोगों का सिद्धांत है। तो विष्णुदूत लोग अच्छा प्रश्न किए कि भाई जब तू अपने को धर्मराज का सेवक कहते हो तो धर्म के विषय में कुछ बताओ। अब जो भी बात बताए हैं जमदूत लोग 100% सही बात बताए हैं। क्या बात बताए हैं? कहते हैं धर्म क्या है और अधर्म क्या है। कहते हैं वेदों में धर्म का वर्णन किया गया है, तो जो वेद का बात मानता है वो धार्मिक है और इसके जो विपरीत है वो अधार्मिक है। बात बिल्कुल सही है। धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीत, धर्म जो है भगवान के द्वारा प्रणीत है, तो जो भगवान का भजन करता है वो धार्मिक है और जो भजन नहीं करता है वो अधार्मिक है। प्रश्न था कैसे, क्या प्रमाण है कि कौन धार्मिक है और कौन अधार्मिक है, इसका विटनेस कौन है? तो उसका वो भी बात बताए वो लोग कि कौन कौन विटनेस है। ये पूरा यहां पर बात बताए हैं कि बहुत लोग साक्षी हैं, जैसे कहते हैं सूर्यो अग्निखम मरुदेव सोम संध्याहनी दिशम तम कुह स्वयं धर्म इति हेते यस्य साक्षिण। ये सब साक्षी हैं, सूर्य अग्नि आकाश वायु देवता, वायु देवता चंद्रमा संध्या दिन रात दिशाएं जल अस्थल तथा स्वयं परमात्मा, ये सभी जीव के कार्यों के साक्षी हैं। तो बिल्कुल यथावत सही बात ये बात बता रहे थे। देखिए यहां पर तीन लोग हैं, एक अजामिल जिसको जमदूत लोग बांधे हैं, दूसरा जमदूत लोग और तीसरे विष्णुदूत। सब जीवित हैं, कोई मरा नहीं है। अजामिल भी सुन रहा है कान खोल करके, जो बातें हो रही थी अजामिल सब समझ रहा था, सब सुन रहा था। तो ये धर्म संबंधी जो बात थी, प्रवृत्ति मार्ग संबंधी जो भी बात थी, उन लोगों ने बिल्कुल यथावत सही सही बात कहा। अब सही बात कहने के बाद अंतिम बात जो था, कल हिजोलने साहब गोविंद महाराज प्रवचन किए थे उस श्लोक पर, कि जीव को शुद्ध होना चाहिए, शुद्धि से कोई भगवान को समझ सकता है, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। विशुद्ध सत्वम इति वासुदेवम, विशुद्ध सत्व भगवान शुद्ध है। कहते हैं ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्तगतोपि वा यस्मरित पुंडरीकाक्ष सभ्यांतर सूची। भगवान सूची है और उनको जानने के लिए हमको भी सूची होना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा बात कि शुद्धि से व्यक्ति पुण्य को प्राप्त करता है और अशुद्धि से पुण्य कार्य करता है, अशुद्धि से व्यक्ति पाप कार्य करता है। पाप से कोई दंड भोगता है और पुण्य से कोई सुख भोगता है। जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं मनुस्मृति के अनुसार, चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो चाहे निवृत्ति मार्ग हो, दोनों बतलाए गए हैं शुद्धि के लिए, क्योंकि शुद्धि से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। और प्रवृत्ति मार्ग वाले जो हैं वो शुद्धि के विषय में अलग तरीके से जानते हैं और निवृत्ति मार्ग वाले अलग तरीके से। प्रभुपाद जी कहते हैं इमीडिएट हैप्पीनेस एंड अल्टीमेट है, और इमीडिएट रिलीफ और अल्टीमेट रिलीफ दोनों रिलीफ है, एक इमीडिएट रिलीफ है और एक अल्टीमेट रिलीफ है। तो प्रवृत्ति मार्ग जो है वो इमीडिएट रिलीफ सप्लाई कर सकता है, इमीडिएट हैप्पीनेस सप्लाई कर सकता है, लेकिन जो निवृत्ति मार्ग है वो अल्टीमेट रिलीफ या अल्टीमेट हैप्पीनेस सप्लाई करता है। देखिए यमदूतों ने अपने उपसंहार में, अपने प्रवचन के, अपने वार्ता के उपसंहार में क्या कहते हैं, तथा एनम दंडपाणे सकाशम कृतकिल विषम निश्यामो अकृत निर्देशो निर्देशम यत्र दंडेन शुद्ध्यति शुद्ध्यति। लक्ष्य क्या है? इस अजामिल को शुद्ध करना। सभी जीव को इंडिपेंडेंस है अपने कर्मों से शुद्धि प्राप्ति करने के लिए। जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वे लोग शुद्धि संबंधी एक ही बात जानते हैं और वह है प्रायश्चित, एटोनमेंट। प्रायश्चित के द्वारा शुद्धि की प्राप्ति, और जमदूत लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली कहते हैं बेटा ये जीते जी शुद्धि के लिए कुछ काम नहीं किया, कोई प्रायश्चित नहीं किया, अब नहीं किया है तो जमराज जी का दंडा खाएगा ना, तब वहां पर शुद्धि होगी। तो शुद्धि के दो रास्ते बतलाते हैं ये लोग, एक रास्ता है प्रायश्चित के द्वारा और दूसरा रास्ता है यत्र दंडेन शुद्ध्यति। दंडा जब खाएंगे तब ये लोग शुद्ध हो जाएंगे। जैसे गंदा कपड़ा होता है धबिया पाट लगाओ ढाए ढाए पीटो तब थोड़ा कपड़ा साफ होता है। अब देखे नाथ जी धोबी लोग कैसे पीटते हैं, धबिया पाट लगाओ तो कपड़ा साफ होगा। तो जमराज जब दंड देंगे तब इसकी शुद्धि होगी। जब तक से बेटा ये शुद्ध नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगी। शुद्धि से सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो अपना प्रवचन ये लोग अब बंद कर लिए, अब कह दिए, तब आगे का जो अध्याय शुरू हो रहा है, इस अध्याय में श्री बादरायण उचु उवाच सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं ते भगवत दूता जमदूता अविभाषितम उपधारिया यथातानम उपधार्यार्थ तान राजन प्रत्याहु नयको विदा। इस श्लोक में दो शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक उपधार्य और एक नयको विदा। उपधार्य वैष्णव को ऐसा ही होना चाहिए, उपधारी। उपधार्य का मतलब है उसे सुनना, समझना और धारण करना। श्रवणे मनसी धृत्वा, सुन करके मन में उसे उतार लेना, सुनना। जब भी कोई बात कहता है तो सावधानी से सुनना चाहिए। सुनेंगे समझेंगे तब अपने जीवन में उसको हम उतार सकते हैं, नहीं सुनेंगे इस कान से सुना इधर से निकल गया तो क्या फायदा। सुनो उसको धृत्वा धारण करो तब वो काम का वस्तु है, उसे कहते हैं उपधार्य। अथ वे लोग इसको सुन करके रियल पॉइंट समझ लिए। हम लोग बड़बड़ाते रहते हैं, कोई अपना सेंटेंस खत्म भी नहीं करता हम बोल देते हैं। बेसिकली बात यह होता है कि हम लोग सुनते नहीं वो व्यक्ति क्या कह रहा है, हम अपना साइड रखना चाहते हैं। जो अच्छा तरह से सुनता है वह समझता है, और जो समझता है वह सही काम करता है। प्रायः लोग सुनते नहीं है, सबका कान बंद हो गया है। सब लोग समझते हैं मैं अच्छा तरह से जानता हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ओपिनियन बना चुके हैं कि सबसे अच्छा जानकार मैं हूं। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं है। वैष्णव सबका सुनते हैं, पापी से पापी का भी सुनते हैं। जब डॉक्टर वही हो जो रोगी का पहले बात सुन ले, है ना? अब डॉक्टर हो ना, तो डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर वह है जो रोगी का बात सुने। रोगी का बात सुनने से 50% का रोग खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब कितने अच्छे हैं, बेचारा हमारा पूरा बात सुने। कितने डॉक्टर सुनते नहीं, पेपर पहन लिया, हाँ एड दवा कया खरीद कर ला जाओ, कमीशन उसमें मिल रहा है उनको। यहां कोई डॉक्टर तो नहीं है ना, कोई है डॉक्टर? तो सुनना बहुत जरूरी है। तो जितने भी हरे कृष्ण मोमेंट के डिवोटी हैं, चाहे फुल टाइम हो चाहे कांग्रेगेशन हो, आप सब लोग डॉक्टर हो। किस चीज के डॉक्टर हो? भवरोग के। आपको भवरोग का दवा देना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम सुने और सुन करके समझे। ऐसे कभी कभी कोई प्रश्न करता है क्लास में, जब तक से वो प्रश्न को आप सुनोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, उत्तर नहीं दे सकते हो। आप स्वयं संतुष्ट नहीं रहोगे, दूसरा संतुष्ट कैसे हो सकता है? तो सुनना उपधार्य। विष्णु दूतों ने सुना, तान राजन। यहां पर राजन शब्द इंपॉर्टेंट है। राजा जो होते हैं वो निर्णय करने वाले होते हैं ना। तो यहां पर और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित आप निर्णय करने वाले हो, तो राजा को सबको सुनना चाहिए, लेकिन राजा को विशेष सुनना चाहिए। सुन करके समझो, बाद में निर्णय करो। राजन प्रतियाहु नयको विदा। नयको विदा मतलब बैरिस्टर, एडवोकेट, लॉयर, न्याय को जानने वाले, न्यायविद। विष्णुदूत कौन है? वैष्णव लोग कौन है? बेस्ट लॉयर हैं। भक्तों लोग बच्चे बैरिस्टर हैं, न्यायविद। जो न्याय दिलाने में सहयोग कर रहे हैं, वही ना, न्याय देते नहीं है। न्यायविद मतलब न्याय को जानने वाला, न्याय दिलाने वाला, न्याय देने वाला नहीं। न्याय देने वाले जमराज जी हैं, समान लोगों के लिए, दोनों के। धर्मराज पुण्यात्मा को, पापात्मा को दंड देते हैं और पुण्यात्मा भगवान के नाम में जाते हैं। तो ये लोग इसको समझे, समझ रहे थे, लेकिन विष्णु दूत लोग जमराज के दूत जो कह रहे थे समझ रहे थे, लेकिन जमराज के दूत नहीं समझ रहे थे कि विष्णु दूत क्या कह रहे हैं। ठीक वैसे ही एक हाई स्कूल का लड़का हो और एक कॉलेज का लड़का हो, तो कॉलेज का लड़का सब समझ सकता है कि हाई स्कूल का लड़का क्या बोल रहा है, लेकिन हाई स्कूल का लड़का नहीं समझेगा कॉलेज वाला क्या बोल रहा है, वो हायर स्टडी किया है। तो निवृत्ति मार्ग वाले जो हैं वो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनकी समझदारी कुछ अलग है। वस्तु एक ही है, दोनों देख रहे हैं उस वस्तु को, लेकिन दोनों के समझदारी में भेद है। निवृत्ति मार्ग वाला देख रहा है उसी वस्तु को और प्रवृत्ति वाल मारा भी देख रहा है। जमदूतों ने देखा, क्या देखा? कि अजामिल पूरे जीवन में केवल पाप किया है, तन से, मन से और धन से। और विष्णुदूतों ने क्या देखा? अंत में नारायण का उसने स्मरण किया। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं जानते कि पाप किया है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं दिए वो लोग। जैसे वो कहा जाता है ना कि आपके पास 100 रुपया है, किसी के पास 100 रुपया है, 100 में से 99 रुपया भगवान को देता है, और किसी के पास 1 रुपया है, वो 1 रुपया भगवान देता है। दोनों बड़ा कौन है? 1 रुपया वाला है। तो वैसे ही विष्णु देखते हैं कि भाई एक रुपया वाला है, एक अंत में नारायण का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। इस संसारी और वैष्णव लोगों में हमेशा यही भ्रम पड़ा रहता है। ये संसारी लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण वाले अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये कहते हैं ना, कहते भी लोग हैं, बाप बेटा बेटा तू क्या कर रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है, ये हरे कृष्ण करने से क्या फायदा, अरे कुछ जाओ कमाओ खाओ कुछ व्यवस्था करो, ये हरे कृष्ण हरे राम कर रहे क्या फायदा। आप लोग सुने ऐसे लोग कहते हैं ना, मैं तो सुना हूं, लोग गाली भी देते हैं। क्योंकि वो लोग इस बात को समझते नहीं, उनके समझ के परे है। और भक्त लोग को बड़ा दुख होता है संसारियों का जीवन देख करके। भक्त समझते हैं कि संसारी लोग अपना जीवन क्यों व्यर्थ में बिता रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कि अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हो। संसारी भी कह रहा है साधुओं को कि संदीपनी कृष्ण अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हो, और संदीपनी कृष्ण भी कहता है दूसरे कर्मियों को तो अपना जीवन व्यर्थ बिता रहे हो। अब देखा जाए थोड़ा कि सही में किसका जीवन व्यर्थ बीत रहा है, थोड़ा एनालाइज किया जाए। इन संसारियों से पूछो, खूब धन कमा लो, सब कुछ प्राप्त कर लो, लेकिन मरने के बाद क्या लेकर जाओगे, बताओ, उतर दो कम से कम, कुछ लेकर जाएंगे हैं? कुछ नहीं लेकर जाएंगे। साधु लोग जीवन में कुछ भी ना कमाएं, केवल हरे कृष्ण का नाम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और मरेंगे तो क्या लेकर जाएंगे, बोलो कम से कम, कुछ है ना लेकर जाने के लिए। अब बताओ बुद्धिमान कौन है, हैं? अरे हुंकारी तो भरो, जेई कृष्ण भजे सेई बड़ो चतुर। भक्त लोग मोस्ट इंटेलिजेंट हैं, वो समझते हैं कि मरने के बाद भी साथ में कुछ जाएगा, रहूंगा तो फर्स्ट क्लास प्रसाद मिल ही रहा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई टेंशन नहीं, नो इनकम टैक्स नो सेल टैक्स नो पुलिस नथिंग हैं। अरे आलू टमाटर और मसाले का भाव भी जानने की जरूरत नहीं है, प्रसाद बना बना मिलेगा उधर, है कि नहीं, कोई टेंशन है ना जी प्रभु, आ जाओ फटाफट, देर मत करो, अभी बताओ कोई टेंशन है ब्रह्मचारी, आलू का भाव क्या है, देखो कुछ मालूम नहीं, अब जाएगा प्रसाद को बना बना मिलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निधाय, केवल आनंद ही आनंद है। तो जीवित है तो अभी आनंद है, और मरेगा तो साथ में कुछ लेकर जाएगा। और जो ये प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं संसारिक लोग, वो जीवित हैं तो भी दुखी हैं, डेली गाली देते हैं सरकार टेंथ क्लास का है, डेली भाव बढ़ते जा रहा है, इसका भाव बढ़ रहा है, उसका भाव बढ़ रहा है, और मरेंगे तो साथ में कुछ जाएगा नहीं। ये लोग समुद्र के किनारे बालू का घर बना रहे हैं, ये बचपना है, प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहना ये बचपना है, संसार में सुखी रहने का इच्छा करना ये बचपना है। ये छोटा बच्चा जो होता है वो समुद्र किनारे जाता है, बालू में पैर लगा करके घर बनाता है, बाप माँ को पिताजी आओ देखो देखो कितना अच्छा घर बनाया हूं, लेकिन उसका उसको मालूम है कि समुद्र का दूसरा धारा आएगा उसको ले जाएगा बहा करके, वो घर को उठाकर ले भी नहीं जाएगा है? तो हो सकता है कि उसको हैप्पीनेस प्राप्त होता है, बच्चा को घर बनाता है ना बड़ा खुश रहता है, घर गिरने न पावे, आप देखे बच्चे को ऐसे घर बनाते हुए, जाओ कभी कभी शाम को बच्चे घर बनाते हैं, इससे बिहारी पी वाले आते हैं तो वो लोग ज्यादा बनाते हैं, घर बनाते हैं, अच्छा लगता है घर बनाना, तो ये इमीडिएट हैप्पीनेस है, अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं है, साथ में कुछ लेकर नहीं जाओगे। इसीलिए सब कुछ यदि छोड़ना पड़े तो हमें सब कुछ छोड़ना चाहिए, लेकिन श्याम सुंदर का चरण नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। ये असली प्रायश्चित है और इस बात को विष्णु दूत लोग जानते हैं। वैष्णव के क्रियाकलाप को ये लोग समझ नहीं पाते हैं। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञाना जाने वो, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी वैष्णव क्रिया मुद्रा को नहीं समझ पाते हैं। वैष्णव लोग रियल साइंसिस्ट हैं। विज्ञान का परिभाषा क्या है साइंस का, बताओ महात्मा, एमटेक बीटेक बताओ, साइंस का परिभाषा क्या है? टू नो थिंग्स एज दे आर इज कॉल्ड साइंस, राइट? वस्तु का यथावत ज्ञान जो है वो साइंस कहलाता है। तो संसारिक लोग पार्शियल ज्ञान प्राप्त करते हैं, समझते मैं साइंसिस्ट हूं, लेकिन भक्त लोग अल्टीमेट ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए रियल साइंसिस वे लोग हैं। तो यहां पर एक केस स्टडी है और वह केस स्टडी किसका है? अजामिल का। सुन लिए विष्णुदूत लोग जगदूतों से, उनके वार्ता को सुनने के बाद इन लोगों को बड़ा दुख लगा। कहते हैं अहो कष्टम धर्म दिशा धर्म दृशा, जमराज जी का नाम है धर्म दृशा, जिनके दृष्टि में धर्म निवास करता हो या जिनका धर्म धर्मोत दृष्टि हो। स वेद परमं गुह्यम धर्मस्य भगवान जमा, भगवान जमराज जो हैं वो वेद के गुह्यतम बात को, जो धर्म है उसको वो जानते हैं, इसलिए उनका नाम है धर्म दिशा, जो धर्म के विषय में यथावत ज्ञान रखते हैं। उनके यहां भी ऐसा हो गया, उन लोगों कष्ट इसलिए नहीं हो रहा है कि जमराज के दूत अजामिल को खींच कर ले जा रहे हैं, इनको कष्ट इसलिए हो रहा है कि जो धर्म को जानने वाला अपने नौकरों को बताया नहीं कि धर्म क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि नौकर गलती करता है तो उसमें नौकर की गलती नहीं मानी जाती है, किसी गलती होती है मालिक की। यदि बेटा कुछ गलती करता है तो बेटे की गलती नहीं मानी जाती, किसकी गलती मानी जाती है? बाप की। या तीसरा बात प्रभुपाद जी बताए कि यदि आप दरवाजा खुला छोड़ दो, चोर आकर चोरी करके चला जाए, तो चोर को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो, गलती किसका है? अपना है कि दरवाजा खुला छोड़ा है। तो उसी प्रकार से इसी सिद्धांत के अनुसार यहां पर इन लोगों को दुख हो रहा है धर्मराज के ऊपर, जमराज के ऊपर। कहते हैं अहो कष्टम, कितना दुख का बात है कि धर्म दिशा, जो धर्म को सम्यक रूपेण जानने वाले हैं, जो महाजन हैं, 10 महाजनों में से एक महाजन है जमराज जी, जो महाजन हैं उनके सभा में भी आज अधर्म दिखाई पड़ रहा है, अधर्म दिखाई पड़ रहा है। और क्या अधर्म है? यत्र अदंडेशु अपापेशु दंडो ये घ्रियते व्यथा, ये व्यर्थ में जो व्यक्ति दंड का भागी नहीं उसको दंड दिया जा रहा है, जो पापी नहीं है उसे पापी समझकर दंड दिया जा रहा है, ये धर्म के जानकार कैसे हो गए? जो दंड देने के योग्य नहीं उसको दंड दिया जा रहा है, यानी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि धर्मराज जी तो हरिनाम का महिमा जानते हैं अच्छी तरह से, वो जानते हैं कि भगवान का नाम में इतना महिमा है, नाम का महिमा है कि इस संसार में कोई व्यक्ति उतना पाप नहीं कर सकता है जिसको भगवान का एक नाम न जलाकर आग कर दे। समस्त पापों को ज्ञानाद अथवा ज्ञानादुतम श्लोक नाम जत संकीर्तम अघम पुन श्रद्धा देव थान लह, भगवान का नाम समस्त पापों को जला करके राख कर सकता है। क्या इस बात को जमराज जी जानते नहीं है? बड़ा दुख की बात है। हरे कृष्ण का डिवोटी अपने कहलाता है लेकिन हरे कृष्ण के नियम कानून को भी नहीं जानता है, बड़ी दुख की बात है। इस्कान का डिवोटी है, इस्कान के नियम कानून को नहीं जानता है, बड़ी दुख की बात है। इसलिए वैष्णवों को सिद्धांत समझना चाहिए। सिद्धांत बोलिया चिते ना करो अलौस, सिद्धांत समझना चाहिए। नाम में बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। ये जो नाम है लगता है कि सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, लेकिन इसकी अगाध महिमा है। शास्त्रों में इसका अगाध वर्णन किया गया है। इस संबंध में एक चुटकुला भी याद आ रहा है, कहानी। एक बार क्या हुआ कि एक गरीब आदमी था, बेचारा भीख मांगता था, बहुत गरीब था। उसे लॉटरी लग गई, खूब पैसा मिल गया। जिसको संस्कार नहीं होता है, एक बाइक खूब पैसा मिल जाए तो चकाचौंध हो जाता है, मैं करूं क्या इसे लेकर के। तो मंदिर में नहीं देना चाहेगा, भगवान के पास नहीं आएगा, क्या करेगा? उस समय को एंजॉय करूं, लेकिन उसे मालूम नहीं कि हाईएस्ट एंजॉय है दे करके। वो लेना चाहता है, ले करके एंजॉय करना चाहता है। ले करके कोई एंजॉय नहीं करता है, दे करके सब एंजॉय करते हैं। उदाहरण में देता हूं, खाने का और खिलाने का। खाने वाला लेता है ना, और खिलाने वाला देता है। यहां तक भर गया है, मर रहा है, खिलाने का दो रोटी और ले लो, थोड़ा थोड़ा सब्जी और ले लो, यही कहता है ना। हमें याद है वापी में एक पारेख जी थे, वेल्सपन के प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ थी। यदि पेट यहां तक भर जाए तब से उनसे ना कहना शुरू करो, कोई गलती से यहां तक आ गया ना किया तो गया काम से। वो ठूस ठूस कर खिलाती थी, खिलाने वालों को आनंद आता है। कहते प्रभु जी गर्म चपाती है। मैं देखता हूं गोपाल कृष्ण महाराज जब भगत लोग को खिलाते हैं तो महाराज कहते बहुत मोटा हो रहा हूं, अब छोड़ दो, नहीं, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो भगत कहता है महाराज ये गर्म गर्म आपके लिए लाया हूं, वो ठंडा वाला रखती है साइड में, ये गर्म खा लीजिए। खिलाने वाले को आनंद आता है, तो लेने वालों को उतना आनंद नहीं आता है जितना देने वालों को। ले एक ही व्यक्ति सकता है, वो है भगवान। बामन भगवान की जय। हम लोगों को बलि बनना चाहिए, आनंद लेना हो तब। तो ये मूर्खानंद क्या किया, पैसा खूब मिल गया, कहीं दिया नहीं, अब लेना चाहा। क्या लेना चाहा? शराब, मांस, स्त्री संग, ये चारों पाप करना शुरू किया। उसमें से उसका बेसिया का एक संग हो गया था, बेसिया से बड़ी दोस्ती हो गई थी। वो बेसिया का जो गांव था नदी के उस साइड था, इसका गांव इस साइड था, बेसिया का गांव उस साइड था, नदी पार करके जाना था। वो बेचारा डेली आता था, पैसा तो खत्म होने वाला है, भक्ति कभी खत्म नहीं होती है, भक्ति तो बढ़ती है, हैं? जितना करो बढ़ती है, लेकिन संसारिक वस्तुएं खत्म होती है। वो पैसा खत्म हो रहा था, एक दिन देखा तो केवल 5 रुपया बचा हुआ था। सोचा ये 5 रुपया में क्या करूंगा, जाऊंगा तो बेचारा जूता मारकर भगा देगी, हैं? तो उसने नया ढोंग रचा। उसने सोचा अब बेचारा से कहूंगा कि अब मेरा तुझसे प्यार हो गया है, अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो उसने 5 रुपए का 5 गुलाब का फूल खरीदा। वो प्यार दिखाने का ना तरीका है आजकल कलयुग में, गुलाब का फूल देकर के। तो गुलाब का फूल तो लेकर के जा रहा था बेसिया को देने के लिए, लेकिन उसका मन में दुविधा था। भगवान गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। उसके मन में संशय था, क्यों? क्योंकि दिल साफ नहीं था। वो पांच गुलाम का फूल प्यार कर रहा था इसलिए नहीं जा रहा था, वो तो पैसा नहीं था इसलिए दिखाने के लिए जा रहा था। वो जा रहा था, उसका मन विषय में लगा था। उस समय क्या हुआ, नदी में पानी कम था, छिछली नदी थी, और कैसे भी उसका पैर फिसल गया और वो पांचों गुलाब का फूल पानी में गिर गया। वो बहने लगा, ये दौड़ रहा है पकड़ने के लिए, लेकिन नदी में प्रवाह ज्यादा था, पकड़ नहीं पाया गुलाब का फूल। तो क्या कहता है, गोविंद आए नमः, अब भगवान को मैं अर्पण कर दिया। जब अपने काम का कोई वस्तु नहीं होता है ना, तो फोन करता, असीम कृष्ण प्रभु हमारे घर में एक सोफा है, मंदिर ले जाएंगे आप? क्यों? क्योंकि अपने लिए नया सोफा खरीदना है, तो पुराना है भगवान के पास दे दो, जो किसी काम का नहीं है। जब कोई काम नहीं होता तो गोविंद आए नमः। चलो, अब मर गया, कुछ समय के बाद मर गया। जमराज के पास गया, जमराज बुलाया चित्रगुप्त को, देखो भाई इसका क्या है। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज ये पापी है, जीवन भर पाप किया, सीधे नरक में डाल दो, आज मुझे आराम करने दो, एक तो पापी मिला है। जमराज ने कहा ऐसा बात नहीं है, हमारे यहां सबका निर्णय होता है। देखो, देखने लगा तो सबका सब पन्ना भर गया था, जैसे मेरा नोटबुक है ना, सब पन्ना भर गया है, एक भी खाली नहीं, सब भर गया है, लेकिन एक पन्ना खाली था, जैसे नोटबुक पन्ने खाली है ना, एक खाना। तो जमराज ने कहा देखो एक पन्ना खाली है, इधर ही भरा हुआ है, कल इधर ही खाली है, बस एक खाली है, क्या किया? तो कह रहे हाँ महाराज गलती हो गया, क्षमा करना, गलती हो गया, ये जब जा रहा था बिस्या के पास तो जो पांच गुलाब का फूल गिर गया इसके हाथ से, तो भगवान गोविंद को इसने अर्पण कर दिया, इसीलिए एक खाली है। अब जमराज जी और चित्रगुप्त दोनों बात कर रहे थे, और ये मूर्खानंद जो था वो भी सुन रहा था, जैसे अजामिल सुन रहा था वो भी सुन रहा था। तब जमराज जी ने कहा भाई देख, तेरे पास 10 मिनट का समय है पुण्य का, और जितना समय है सब पाप का। अब तू बचा, पहले पुण्य का फल भोगेगा कि पाप का? तो उसने कहा मैं पुण्य का फल भोगूंगा। तो कहा ठीक है, तो 10 मिनट के लिए उसको स्वर्ग का यात्रा कराने के लिए ले गए। तो कुछ अटेंडेंस लोग थे साथ में लेकर गए। जब स्वर्ग में जब जा रहा था तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई स्वर्ग में अच्छा चीज देखने जो क्या है। स्वाभाविक है, जब गांव से लोग आते हैं बॉम्बे में तो जानना चाहते हैं कि बॉम्बे में अच्छा चीज देखने क्या है। गेटवे ऑफ इंडिया है, जुहू बीच है, हरे कृष्ण मंदिर है, अमिताभ बच्चन का बंगलो है, सब ऐसा देखना चाहते हैं, अच्छा चीज देखने क्या है। तो उसने पूछा तो अटेंडेंस ने कहा कि हमने सुना है कि जमराज जी का अमरावतीपुरी बड़ा श्रेष्ठ है। कहा चलो हमको वही ले चलो। देखिए सतगुणी व्यक्ति होता है वो अपने घर के बाहर थोड़ा हरा भरा लॉन रखता है, गार्डन लगाता है। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कंक्रीट जंगल बना देता है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो मुर्गी मछली बकरी सब पाल कर रखता है घर के आसपास, ये पहचान है। तो स्वर्ग तो सतगुण प्रधान है। तो ज्यों ही अमरावतीपुरी के गार्डन में नंदन कानन में वो पहुंचा, अब समय शुरू हो रहा था 10 मिनट, तो उसने बहुत गुलाब का फूल देखा। जैसे गुलाब का फूल देखा आंख बिल्कुल खुल गया, जगन्नाथ जी जैसा बड़ा अंग आंख हो गया उसका। तो जमराज के दूतों ने कहा कि भाई अब समय हमारा पूरा, अब तुम्हारा समय यहां से शुरू हो रहा है, अब तुमको 10 मिनट बाद हम लेने आएंगे, तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ और इच्छा है? कहा भैया हमको दो चॉपर दे दो आप लोग, चॉपर समझते ना, हंसवा काटने वाला, तो उस कैंची, दो कैंची तो ऐसे होता है ना, एक ही से काटने वाला, वो जो नारियल काटते हैं ना वैसा वाला, दो चॉपर दे दो, चाकू दे दो, दो बड़ा बड़ा चाकू इन लोगों दे दिया। जमदूत लोग सोचे क्या करेगा, क्या इंद्र का मर्डर करने जा रहा है, क्या कर रहे हैं, 10 मिनट में क्या करेगा, दो चाकू ले लिया। जमदूत लोग देख रहे हैं 10 मिनट में ले जाना है, कहा कि हे चाकू दो लो, अब शुरू तुम्हारा यहां 10 मिनट। उठाया दोनों चाकू, गुलाब के बिल्कुल दोनों तरफ फूल के झाड़ लगे थे, रास्ता था। गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः, 10 मिनट तक गुलाब का फूल काटते गया, गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। 10 मिनट हो गया, जमराज के दूत आए, कह चलो टाइम हो गया, चलना है अब, लेकर के आए। तो जमराज ने पूछा, चित्रगुप्त देखो भाई अभी इसका क्या है? कहा कि महाराज ये पापी आदमी है, जाकर के अप्सराओं से मजाक किया होगा, थोड़ा सुरापान किया होगा, अब तो डाल दो, अब 10 मिनट में क्या किया होगा। जमराज ने कहा ऐसा बात नहीं भाई, देखो क्या बात है। जब देखा चित्रगुप्त तो उसका आंख खड़ा हो गया, जगन्नाथ बन गया वो, उसका आंख खुल गया। क्या देखा? कि सब का सब व्हाइट हो गया है, एक भी काला नहीं उसमें। एक ही पेज काला नहीं, सब उजला हो गया है। तो आश्चर्य हो गया। जमराज ने कहा कैसे भाई, क्या हो गया? कहा महाराज बड़ी गलती हो गई, पहले तो 5 गुलाब का फूल डाला था, इसके पास 10 मिनट था और पूरे 10 मिनट में गोविंद का भजन किया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भांजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कर्माणि निर्दहति, निर्दहति मतलब निकृष्ट रूपेण दहति इति निर्दहति, जो टोटली कंप्लीटली जला करके राख कर दे। किंतु च भक्ति भांजाम, किंतु च, किंतु मतलब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्रायश्चित के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं, ध्यान के द्वारा नहीं। यदि कर्म फल नष्ट करना है तो भक्ति करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किंतु च भक्ति भांजाम, दूसरा कोई तरीका नहीं है, यही एकमात्र तरीका है कि भक्ति करें। और इस कहानी से यही उदाहरण मिलता है, यही सारांश मिलता है कि कैसे वो पापी व्यक्ति भी, अजामिल से वो कम नहीं था, अजामिल का बाप था, अजामिल तो कम से कम बचपन से संस्कार उसका था, ब्राह्मण का बेटा था, बुढ़ापे में संस्कार लौट आया था, बेटे का नाम नारायण रख दिया था, लेकिन ये बेटा तो पूरा पापी किया था, चल 5 गुलाब का फूल डाल दिया। अब संसारिक लोग कहेंगे साधु लोग पागल हैं, ये 5 गुलाब फूल डालने से कोई उपज आ सकता है, हैं? इस बात को नहीं समझ पाएंगे संसारिक लोग। तो यहां पर इस श्लोक में 3 चीज देखने को मिलती है। एक चीज यहीं से भगवान के नाम का महिमा का उद्घोष करेंगे विष्णुदूत लोग, दूसरा आश्चर्य हो रहा है धर्मराज जी पर कि जो धर्म के संबंध में सब कुछ जानने वाले हैं उनसे ऐसी गलती हो सकती है, और तीसरा कष्ट हो रहा है कि धर्म के राज्यसभा में अधर्म का काम हो। तब धर्मराज के यहां कहते हैं यत्र अदंडेशु अपापेशु दंडो, जो दंडनीय नहीं है, जो पापी नहीं है उसको दंड दिया जा रहा है। यही ध्रियते, उसके दंड निर्धारित किया जा रहा है। वो भी कैसे? वृथा, यह व्यर्थ है, ये बकवास है। और इसी बात को लेकर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहे हैं कि वास्तव में सोचनीय है, आजकल के जो गद्दी पर बैठे हुए धर्मराज लोग हैं, जमराज लोग हैं, हैं? आजकल पुलिस वाले को लोग जमराज कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस का नियम तो का जमराज खड़ा है उधर, लेकिन वास्तव में प्राइम मिनिस्टर जमराज है, कोर्ट के जो जज लोग हैं वो जमराज है। वो लोग इस धर्म के संबंध में नहीं जानेंगे, उनको धर्म जानना चाहिए, नहीं तो यही होगा, निरपराधी को दंड निर्धारित है। वैसा होता भी है, प्रभुपाद जी लिखे हैं वैष्णव जन समस्त पतित आत्माओं के प्रति अपनी आध्यात्मिक करुणा के कारण धार्मिक सिद्धांतों की मानक विधि के अनुसार प्रचार करने बाहर जाते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से जिन वैष्णवों ने भगवान की महिमा का प्रचार करने के लिए अथवा जीवन समर्पित कर दिया है वे कभी कभी सताए जाते हैं और शांति भंग करने के झूठे आरोप पर न्यायालयों द्वारा दंडित किए जाते हैं। अब देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये साधु लोग शांति स्थापना करने जाते हैं, अरे मूर्ख कहते हैं शांति भंग करने आ गए। साधु लोग शांति स्थापना करने के लिए गलियों में जाते हैं, घर घर में जाते हैं, देश विदेश जाते हैं। सबसे बड़े साधु ब्रज की गोपियां इस बात कहती है, कैसे भूरीदा जाना, भूरी गिरंती थे भूरीदा जाना, भूरी गिरंती मैग्नेनियसली वो घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये मैग्नेनियस है साधु लोग, भूरीदा हैं, शांति दूत हैं, लेकिन ये मूर्ख लोग समझते हैं कि ये लोग अशांति फैलाते हैं। जब कभी कभी हमारे भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो कहते हैं न्यूसेंस है, शांति का रास्ता है नाम संकीर्तन कलयुग में, वो कहते हैं न्यूसेंस है। पुस्तक वितरण करने जाते हैं कहते हैं न्यूसेंस है। अमेरिका में तो बैन हो गया, पहले एयरपोर्ट भक्त लोग जाते थे, अरे न्यूसेंस है। अब इंडिया में परमिशन लेना पड़ता है, वो पाव भाजी वाला अपना लगा लेगा ठेला, उसको परमिशन की जरूरत नहीं है कि हफ्ता देता है ना, लेकिन हरे किस्म वाले अपना लगाएंगे बुके सब तो परमिशन है महाराज के पास। अब निशन भरा बाहर क्या हो रहा है समझ नहीं रहा। इसीलिए शास्त्र जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। तो समराइज इस वर्ष, इस अध्याय का प्रारंभिक वर्ष है। यहां पर जमदूतों को जो प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं, अब विष्णु दूत लोग उनको निवृत्ति मार्ग का ज्ञान देने जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जमदूत लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे पापी आजामिल को ये लोग क्यों छुड़ा रहे हैं, और क्यों छुड़ा रहे हैं इसी बात का उत्तर इस पूरे अध्याय में दिया गया है। क्यों छुड़ा रहे हैं, क्योंकि उसने मरते समय नारायण का नाम लिया था, बस इसी बात को बतलाए हैं। और उसके बाद जब पूरा वो लोग भी कन्विंस हो गए, जमदूत लोग कन्विंस हो गए, बस बात ठीक कर रहे हो, वो भी प्रणाम कर करके वहां से चल दिए। जब चल दिए तो अजामिल को थोड़ा सांस लेना शुरू किया कि अब बच गया हूं, अब बच गया हूं, तो थैंक यू बोलना चाह, प्रणाम किया इन लोगों को। अब कुछ बोलने ही वाला था कि विष्णुदूत लोग वहां से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि विष्णुदूत का जो काम है उतना ही करना है। उनका काम है कि वैष्णवों का रक्षा करना, जो नारायण का नाम लेता है उसका रक्षा करना, तो रक्षा किए। और बाद में अजामिल कंटम्पलेशन करना शुरू किया, जो जमदूतों से सुना, जो विष्णुदूतों से सुना, दोनों पक्ष सुन लिया, निवृत्ति मार्ग भी सुन लिया, प्रवृत्ति मार्ग भी सुन लिया। प्रवृत्ति मार्ग संबंधी जो जो काम उसने किया था अपने एंजॉयमेंट के लिए, पाप का काम जो किया था उसके लिए उसे ग्लानी हुई। कहा जाता है, मैं प्राय कहता हूं, 4R फॉर्मूला, रियलाइजेशन, रिपेंटेशन, रेक्टिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन। और रियलाइज किया कि हाय हाय मैं क्यों ऐसा काम किया, मैं कितने अच्छा ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, सुंदर पत्नी थी, बाप मां थे, मैं ऐसा क्यों किया, रियलाइज किया, रिपेंट कर रहा था। और बाद में रेक्टिफाई करने के लिए तुरंत उठा और वहां से हरिद्वार चल दिया, जाकर के मंदिर में बैठ करके भजन किया, रेक्टिफाई किया। और बाद में पुनः यही विष्णुदूत आए पुष्पक विमान लेकर के और अजामिल को उसके धाम, भगवान के धाम लेकर के चले गए। तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। लेकिन इस अध्याय का जो क्रंचिंग पॉइंट है, यही साधुओं का धर्म है कि सबको संतुष्ट रखना। धीर अधीर जनक प्रिय, साधु लोग दोनों के, रसियन और जेंटल, दोनों के लिए प्रिय होते हैं। नारद जी को रावण भी प्रणाम करता था और विभीषण भी प्रणाम करते थे। नारद जी को कंस भी प्रणाम करता था, उदय जी प्रणाम करते थे। तो नारद जी धीर अधीर जनक प्रिय हैं, तो वैसे ही वैष्णव लोग धीर अधीर जनक प्रिय हैं। तो विष्णु दूत नहीं चाहते थे कि जमदूत बेचारे दुखी रहे, स्वाभाविक है उनके। देखिएगा, यदि यह बात नहीं हुई होती कि बेटा तू लोग कह रहा है सब ठीक कह रहा है, किसने नारायण का नाम लिया है, तो जब जमदूत और विष्णु दूतों के विषय में जो वार्ता हुई है, वहां पर विष्णु दूत जमदूत लोग नारायण के नाम का और महिमा सुनना चाहते हैं। वो कहे कि महाराज बताइए, आपका नौकरी हम क्यों करेंगे। वो चार हाथ वाले आकर के उसको छुड़ा कर ले गए। उस नारायण ने बोल दिया इसलिए, तो नारायण में क्या है। तब जमराज को बड़ा गलती हो गया, तुमने गलती कर दिया, वो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, तुम लोग ने अपना बाउंड्री लिखा क्रॉस कर दिया, हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। जमराज जी भी समझ गए इस बात को, तो नारायण नाम के ऊपर ही विष्णु दूतों ने एक क्लियर किया पूरा मिसकंसेप्शन, नहीं तो पुअर अजामिल कहां गया होता भगवान ही जाने। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? माइक 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 दबाए उधर। संदीप ने कहां चले गए?
हरे कृष्णा। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने प्रवचन की शुरुआत में ही जो प्रचारक के लिए जो सबसे बड़ा आज की तारीख में जो प्रश्न है वो बापू के बारे में, हमें बहुत प्रश्न पूछते लोग, लेकिन हम लोग उनको कन्विंस नहीं कर पाते, लेकिन जो आपने बताया वो बहुत ही अच्छा और सामने वाले भी कन्विंस हो जाए ये प्रकार का था, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
प्रश्न किसी को है?
हरे कृष्ण बाबू जी। बाबू जी पहला प्रश्न तो ये है कि जब उसके पाप नष्ट हो गए थे अजामिल के, तो तुरंत विष्णु दूत से भगवत धाम क्यों नहीं लेके गए, उसने नारायण नाम लिया था। और दूसरा प्रश्न ये है, भागवतम में आया है कि जब 2 साल तक उसने हरिद्वार में भगवत नाम लिया, उसके बाद में उसे वही विष्णु दूत लेने के लिए आए, तो इसका भी कुछ सिग्निफिकेंस है क्या कि वही विष्णु दूत उससे लेने के लिए आए।
विष्णु दूत लेने आए थे, वही देखने में वैसे ही लग रहे थे, वही थे दूसरे थे, लेकिन देखने में चार हाथ वाले थे, वैसे अजामिल पहचान गया कि विष्णु दूत लोग हैं। जहां तक भगवान का नाम लेकर के, भगवान का नाम लिया तो जमराज के दूतों से बच गया पहला चीज, और जब इस बात समझ करके जब विष्णु दूतों से जब साधु संग किया तब उसका भजन परिपक्व हुआ। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, भक्ति देवी जो है ना वही हमें भगवान के चरणों में लगा सकती है। तो नारायण का नाम लिया तो शुद्ध हो गया, शुद्धि का बात चल रहा था। जमदूत लोग समझ रहे थे कि प्रायश्चित के द्वारा ही शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो जमराज जब दंड देंगे तब शुद्ध होगा। और विष्णु का नहीं है, नारायण का नाम ले लिया सबसे बड़ा शुद्ध हो गया, तो शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद क्या करना चाहिए, मतलब हरे कृष्ण डिवोटी हो गया तो क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो उसको सेकेंड चांस मिला भजन करने के लिए, उस भाव को प्राप्त किया। भगवान कहते हैं यम यम वापी अस्मरण भावम तजंतंते कलियोरम तम तमयति कौन्तेय सदा तदभाव भावित, उस भाव को प्राप्त होगा। ये कोई भगवान नहीं कहते हमारे धाम में आ जाएगा, उस भाव को जैसा कर्म किया रहेगा उसके अनुसार देह मिलेगा, उस भाव को प्राप्त करेगा। तो उसने नारायण भाव को, कृष्ण भाव को, कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया। वो कैसे प्राप्त किया, विष्णु दूतों के संगति से। क्योंकि भक्ति देना केवल वैष्णव का काम है, कृष्ण को देना वैष्णव का, कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण देते पारो तुम्हारा स्वकती आज है, ये वैष्णव ही कृष्ण को दे सकते हैं, और कैसे भक्ति के द्वारा। तो विष्णु दूत लोग उसको भक्ति दिए, जिससे भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त किया। ठीक है, माइक माइक।
हरे कृष्ण, आपने जो बताया विष्णु दूत यम दूत है, वो तो हम ये भौतिक आंकों से भक्ति स्थानों से उनका सुन नहीं सकते हैं, तो आज्ञा मिल में कैसा सुना, एक प्रश्न है। दूसरा ये है कि बहुत से लोग होते हैं कौन देखा यम दूत, कौन देखता है विष्णु दूत, कौन देखा है, ये तो काल्पनिक कहता है। मैं बोला उनका कि सामने हमने अमेरिका नहीं देखा है, तो अमेरिका नहीं बोलू, बोले नहीं अमेरिका देखने वाले है, अफ्रीका लंदन देखने वाले है, तो ऐसा भगवान को कौन देखा है, विष्णु दूत को कौन देखता है, लाओ बोलते सामने। मैं बोलता मंदिर में आओ मैं दिखाता हूँ आपको, तो प्रचार करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, तो क्या कहना चाहिए।
जब तक से दिक्कत ना हो तब तक से आप प्रचार करके आराम करोगे, जब दिक्कत होगी तभी प्रचार करोगे ना, दिक्कत होना चाहिए, जब दिक्कत होगा तब हम प्रचार करेंगे। जहां तक किसने देखा है विष्णु दूत को, किसने देखा है जमदूत को, अरे वो तो दूर रहने दो। आप आंख का बरौनी देख रहे हो, जो आपके बिल्कुल नजदीक है यहां पर देख रहे हो, है कि नहीं, कैसे देखोगे, हाँ दर्पण चाहिए। तो ऐसे भगवान को देखने के लिए इन अंधों को बताओ कि गुरु चाहिए, दर्पण चाहिए, तब दिखाई पड़ेगा। अरे दूर देखना छोड़ो, अंदर देखो, यहीं का ही एकदम बिल्कुल यहीं का देखो, नहीं दिखाई पड़ा, दर्पण चाहिए। चलो दूसरा बात और, हाँ, क्या प्रश्न था, नहीं, दो प्रश्न था, एक ये प्रश्न था और दूसरा वो तो उत्तर दे दिया मैं, अजामिल ने कैसे देखा, हाँ ये प्रश्न था। देखिए जब भी हमारे आंख कान नाक में देखने की शक्ति नहीं है, ये शक्ति आत्मा में है। आत्मा जब देह छोड़ देता है, चाहे रसगुल्ला खिलाओ चाहे गाली दो, पता चलेगा। तो वहां पर अजामिल का शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर आत्मा जो था वो भी शरीर में था, कान था, सॉरी मन था, बद्ध अवस्था में अजामिल था। जब शरीर जला दिया जाता है तो खत्म हो गया, लेकिन जब तक से शरीर में आत्मा रहता है वो सुन सकता है, बोल भले न सके लेकिन सुन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मर जाता है ना, वहां भगवान का नाम लो, क्योंकि आत्मा घूमता रहता है उधर ही, उस समय कल्याण हो जाएगा। यदि आज शरीर जल जाएगी, खत्म हो गई, तो जमराज के पास जाओगे तो वहां भी शरीर मिलेगा आपको, वो रबड़ का शरीर होता है, उसे यातना देह कहते हैं। शरीर पर असर नहीं पड़ता, यदि शरीर पर असर नहीं पड़ता है, अनुभव करने वाला आत्मा है शरीर नहीं। जो रबड़ का देह मिलता है हम लोगों को जमदूतों जमराज के लोक में, वो जो चाहे वो कल्लू में पिराया जाता हो, चाहे आग में डाला जाता है, शरीर पर असर नहीं पड़ता, वो आत्मा भोगता है, इसे यहां पर हम भोग रहे हैं, और वो क्यों, बद्धता के चलते। तो पूरा जो प्रोसेस है भक्ति का, उस बद्धता से छुड़ाने के लिए है, ठीक है। तो उसी देह में था, सुन रहा था।
हरे कृष्ण जी, आपने जैसे अभी बताया, तुरंत अभी आपने बताया कि वहां पे यातना शरीर दिया जाता है, वहां पे यातना शरीर दिया जाता है, तो आपने जो कंजूस का स्टोरी बताया था, उसमें जो कंजूस स्वर्गलोक में जाके उसने वहां पे सभी पुष्पों को भगवान को, गोविंद को ऑफर किया था, काट को,
कंजूस नहीं, विषयी
विषय।
हाँ।
तो फिर जब वहाँ पे यातना शरीर दिया जाता है तो वहाँ पे नया कर्म कैसे किया जा सकता है? वहाँ जब यातना शरीर दिया जाता है सिर्फ भोगने के लिए सुख और दुखों को, तो वहाँ पे वो नया कर्म कैसे कर सकता है जिसका फिर से कर्म बंधन लग जाए?
आपका कोई बहुत क्लोज संबंधी था जो नहीं है, मर गया है, है ना? आंख बंद करके देखो, वो सामने खड़ा हो जाता है कि नहीं? हो जाता है ना, तो देह तो नहीं है ना, फिर सामने खड़ा कैसे हो गया? एनीवे चलो, तो ये देह प्राप्त होता वो यातना देह था, उसको यातना देने के लिए ये देह तो अजामिल का जो ये जो विषयी व्यक्ति के होते हैं तो खत्म हो गया था, जल गया था, खत्म हो गया था, मर गया था वो, लेकिन यातना देह था, उसमें सुख भी भोग सकता है दुख भी भोग सकता है। यातना दो प्रकार के होते हैं, प्रभुपाद जानते हैं कि पहले राजा लोग क्या करते थे, किसी को दंड देना होता पानी में डुबाते थे, पानी में डूबना दुख है, दोनों बार सांस लिया सुख मिलता है, देह तो वही है ना, है पानी डुबाया दुख हुआ, दोनों बाहर आया तो सुख हो गया। चाहे इसी देह में हम लोग दुखी भुगते हैं सुखी भुगते हैं, वैसे यात्रा देह में भी जब पुण्य किया होगा तो सुख की मिलेगी, पाप किया होगा यातना देह ही था। क्योंकि यमराज के दूत लोग उसको लेकर गए थे वहां तक 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए, चाहे ये भी हो सकता है कि उनको नया शरीर कुछ मिल गया होगा स्वर्ग में जाने, जो मैं जानता नहीं, वो बताया नहीं गया है, उससे मतलब नहीं है, गया था वहां पर स्वर्ग में जाने के लिए, कोई कह सकता है कि यातना शरीर से कैसे वहां जा सकता है, तो फिर जमदूरी में रहेगा, शायद दूसरा शरीर मिलेगा 10 मिनट के लिए, 10 मिनट का शरीर मिलना कम थोड़े है, मच्छर कितना समय का समझ मिलता है, मच्छर का शरीर कितना मिनट का होता है, जन्म लिया गया काम से। हाँ असीम जी बोलते हैं पुण्य का यातना शरीर नहीं मिलता है, तो दूसरा शरीर मिला होगा, पुण्य का जो मिला होगा जिसे जिसे वो अनुभव कर सके मैं स्वर्ग में आया हूं, लेकिन उसकी यादगारी थी है? हाँ स्वर्ग में कर्म होता है, स्वर्ग भी कर्मलोक है, इंद्र गलती करते हैं यहां पर नहीं आना पड़ता है, सूर बनना पड़ता है उनको, वो भोग जोनी है। और कोई प्रश्न? हाँ
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण
जी, मेरे मस्तिष्क में एक विचार काफी समय से कौनता है, मैं सोचता हूं कि एक प्रश्न मेरा यह है कि ऐसा मैंने बुजुर्गों से भी सुना है वृद्धजनों से कि मारने वाले भी प्रभु परमात्मा ही हैं और रक्षा करने वाले भी वही हैं, ये सत्य है?
बिल्कुल सत्य है।
और कहते हैं उनकी इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ती भी नहीं हिलता, ये भी सत्य है?
बिल्कुल सत्य है।
तो ये सत्य है तो फिर मैं सोचता हूँ कि
उनके इच्छा के बिना नहीं, उनके संगम के बिना, उनके अनुमति के बिना,
उनकी अनुमति के बिना, ठीक, तो सोचता हूँ
अनुमति और इच्छा में अंतर है। हाँ
अच्छा, उनके आदेश और इच्छा में अंतर है, तो सोचता हूँ कि जब ये उनकी अनुमति से ये हो रहा है तो फिर जो समस्त ब्रह्मांड में क्षण क्षण जो भी घटित हो रहा है, बुरा अच्छा पाप धर्म, तो ये भी क्या उनकी इच्छा से ही हो रहा है?
उनकी इच्छा उनकी अनुमति से हो रहा है,
अनुमति से हो रहा है। तो फिर सोचता हूँ अगर प्रभु की अनुमति से हो रहा है तो फिर मानव के ऊपर जो अच्छा बुरा जो कर्म करता है तो वो कर्म योग का कैसा भागी बनता है?
आप कभी टैक्सी में चढ़े हो?
हाँ टैक्सी में चढ़ा हूँ।
रिक्शा में चढ़े हो?
जी।
आपको मान लो यहाँ से एयरपोर्ट जाना है,
जी,
तो आपने रिक्शा वाले से कहा आपकी इच्छा हुई कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, रिक्शा वाले से कहा भाई मुझे एयरपोर्ट ले चलो, आपको एयरपोर्ट ले जाएगा?
जी।
जाने के बाद पैसा किसको देना पड़ेगा?
हाँ जी,
एयरपोर्ट जाने के बाद
हाँ।
पैसा कौन देगा?
पैसा मैं ही दूंगा।
क्यों दोगे? वो तो अपना रिक्शा में लेकर गया आपको वहां पर। आपने इच्छा किया कि मुझे एयरपोर्ट जाना है,
हाँ।
वो आपको वहां से ढो करके वहां पर लाया, इसलिए पैसा आपको ही देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इच्छा। तो हम इच्छा करते हैं भगवान का भजन नहीं करेंगे, भगवान कहते बेटा खुश रह भजन मत करते, कोई बात नहीं।
अच्छा,
और जो फल है पैसा जो है ना वो आपको ही देना पड़ेगा, भगवान को नहीं देना पड़ेगा।
अच्छा।
कृष्ण।
और कोई प्रश्न? ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रमानंदे हरि।